नमस्कार भारत, तारीख 18 जून, दिन रविवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। गोरखा लैंड आंदोलन को लेकर दार्जिलिंग में हिंसा की ताजा घटनाएं, पुलिस व आंदोलनकारियों के बीच हुई झड़प में 2 लोगों की मौत।
अब हम क्या चाहते हैं, हम सेंटर इंटरवेंशन चाहते हैं। द रीजन इज बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट द स्टेट गवर्नमेंट।
मथुरा में तेजाब हमले की पीड़ित दलित महिला पिछले 1.5 महीने से इलाज के लिए दर दर भटक रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज महामुकाबला, चिर प्रतिद्वंदी भारत व पाकिस्तान के बीच।
हमारे लिए एक क्रिकेट मैच है जो हम जाके जैसी अभी तक क्रिकेट खेली है कंसिस्टेंट, वैसा ही कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी परफॉर्मेंस हो सके।
कार्यक्रम में होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में कल हुई 2 मौतों के विरोध में आज गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बंद का आह्वान किया है। शनिवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प हुई थी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका में हास्य कलाकार बिल कॉस्पी यौन प्रताड़ना मामले में अभियोजकों का कहना है कि वो उन पर फिर से मुकदमा करेंगे। इससे पहले एक जज ने मामले में सुनवाई ठीक से न होने की घोषणा की थी। 53 घंटे के विचार विमर्श के बाद 10 सदस्यों की ज्यूरी मामले में सर्वसम्मति से फैसला लेने में असमर्थ रही थी। बिल कॉस्पी पर साल 2004 में एंड्रिया कॉस्टैंट को नशे की दवाई देने और उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। उनके वकील का कहना था कि जो कुछ हुआ वो आपसी सहमति से हुआ था। सऊदी अरब ने अपने पड़ोसी कतर पर लगाए आरोपों को दोहराया है और कहा है कि कतर आतंकवादी समूहों का पोषण करता है और दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप करता है। हाल में कतर पर दबाव बनाने के लिए सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने कतर के साथ अपने सभी राजनयिक संबंध खत्म कर लिए थे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री अब्दुल अल जुबैर ने बीबीसी से कहा,
The economic part is not significant to them.
वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक हैं। आर्थिक स्तर पर उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हम कतर में मौजूद अपने भाइयों को एक कड़ा संदेश देना चाहते थे कि यदि वो सामान्य संबंध रखना चाहते हैं तो उन्हें हमारे साथ सामान्य व्यवहार करना होगा। कोई भी कतर या कतर की जनता को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता और हमने ये स्पष्ट भी कर दिया है, लेकिन हम उनके साथ तब तक रिश्ते बहाल नहीं करेंगे जब तक वो अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करते। सऊदी अरब के विदेश मंत्री अब्दुल अल जुबैर के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन में सूडान डॉक्टर्स यूनियन का कहना है कि सूडान की सरकार को देश में हैजा की महामारी की घोषणा कर देनी चाहिए। सूडान के अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि देश में अब तक हैजा से 280 लोगों की मौत हुई है जबकि 15,000 लोग इसकी चपेट में आए हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ये हैजा नहीं है बल्कि एक घातक किस्म का डायरिया है। ब्रिटेन में सूडान डॉक्टर्स यूनियन के अध्यक्ष हाशिम अल खिद्र का कहना है,
We know that Sudan has declared cholera in 2006 and this has triggered a great
हम जानते हैं कि सूडान ने 2006 में हैजा महामारी की घोषणा की थी और उससे काफी हद तक स्थिति पर काबू पाने में मदद मिली थी। हैजा किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए परीक्षा से कम नहीं। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने की कगार पर है और हैजा के फैलने के साथ लगभग उस मुकाम तक पहुंच चुकी है, लेकिन हमें नहीं पता कि क्यों इसे महामारी घोषित नहीं किया जा रहा। मुझे लगता है कि ऐसा करने पर उन्हें बहुत मदद मिलेगी और होने वाली मौतों की संख्या पर भी फर्क पड़ेगा। ब्रिटेन में सूडान डॉक्टर्स यूनियन के अध्यक्ष हाशिम अल खिद्र के शब्द। पुर्तगाल में अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय पुर्तगाल में जंगलों में लगी आग में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हुए हैं। देश के गृह मंत्री जोआ गोम्स का कहना है कि 16 लोगों की मौत उनकी गाड़ी में जल जाने से हुई जब वो पेद्रोगा ग्रांदे में आग में फंस गए थे। 3 अन्य लोगों की मौत धुएं के कारण हुई। सीरिया के दक्षिणी शहर डेरा में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में अस्थायी तौर पर युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। हाल के हफ्तों में डेरा पर बमबारी करने वाली सीरियाई सरकार का कहना है कि ये युद्ध विराम 48 घंटों तक लागू रहेगा और इस दौरान सुलह की कोशिशें की जाएंगी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। आज भारत और पाकिस्तान के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें होंगी कि आईसीसी चैंपियनशिप में महामुकाबले में ट्रॉफी कौन जीतता है। ये पहला मौका होगा जब चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान की टीमें 50 ओवरों वाले आईसीसी चैंपियंस के फाइनल में आमने सामने होंगी। भारत चौथी बार चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है, जबकि पाकिस्तान के लिए ये पहला मौका है। विस्तार से चर्चा करेंगे आज होने वाले महामुकाबले के बारे में, लेकिन पहले देश की राजनीतिक हलचल। गोरखालैंड आंदोलन को लेकर दार्जिलिंग में हिंसा की ताजा घटनाएं हुई हैं। कल एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस व आंदोलनकारियों के बीच हुई झड़प में 2 लोगों की जान गई है। इसके खिलाफ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने आज बंद का आह्वान किया है। उधर दार्जिलिंग और समूचे पहाड़ पर बेमियादी बंद के दौरान कई जगहों पर आगजनी व तोड़फोड़ की खबरें मिली हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। दार्जिलिंग से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल से अलग होकर गोरखालैंड राज्य की मांग कर रहे लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। ऐसे लोगों का मानना है कि यह अंतिम लड़ाई है, वे गोरखालैंड के अलावा दूसरी किसी भी शर्त पर बातचीत को तैयार नहीं है। दार्जिलिंग के चौरस्ता में रहने वाली कोमल थापा ने बीबीसी से कहा कि हमें पश्चिम बंगाल की सरकार पर विश्वास नहीं है। कोमल थापा ने कहा,
ये जो जितना भी एजिटेशन अभी चल रहा है, हाल ही में सबको पता है ये 100 ईयर्स ओवर हो चुका है हमारा जो गोरखालैंड का डिमांड है। अब हम क्या चाहते हैं, हम सेंट्रल इंटरवेंशन चाहते हैं। द रीजन इज बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट द स्टेट गवर्नमेंट।
इधर डेस्टिनेशन पाटलेबास मार्च के तहत कल जुलूस निकाल रहे आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर हिंसक झड़पें हुई। यहाँ हुई हिंसा में इंडियन रिजर्व बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट किरण तमांग और 35 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कुछ घायलों को बुलेट इंजरी भी है। उग्र लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर बुलेट भी उपयोग में लाया गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अनुज शर्मा ने बीबीसी को बताया कि पुलिस ने उपद्रव कर रहे 7 लोगों को गिरफ्तार किया है।
हमारे पास जो है 35 पुलिस पर्सनल इंजर्ड हुए, 7 आदमी अरेस्ट हुए, पब्लिक डेथ कंफर्म अभी तक हुआ है।
क्या पुलिस ने भी फायरिंग की थी भीड़ पे? इस बीच गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने कल की हिंसक झड़पों में अपने 2 कार्यकर्ताओं के मारे जाने का दावा किया है। मोर्चा प्रमुख विमल गुरुंग ने आरोप लगाया है कि इनकी मौत पुलिस फायरिंग में हुई, वहीं पुलिस ने फायरिंग से इनकार किया है। विमल गुरुंग ने कहा,
त्यो माथि बंगाल सरकारले एउटा गोली प्रहार गरेर हाम्रा 2 शहीदहरू जुन हाम्रा भाइहरू शहीद भएका छन् म उहाँलाई सलाम गर्न चाहन्छु।
गृहमन्त्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर कल शाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत की। इससे पहले कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वे आंदोलनकारियों से बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दार्जिलिंग हिंसा के पीछे विदेशी शक्तियों का भी हाथ हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा
कि देखिए आज जो हो रहा है, एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है। एक दिन में इतना बुमा नहीं आया, इतना बॉम्ब्स नहीं आया, इतना आर्म्स नहीं आया, एक बहुत दिन से जमा हुआ। आज हमारे इधर में बहुत सारे बॉर्डर है, स्टेट का बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है।
दार्जिलिंग में पुलिस और सेना के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। कल हुई हिंसा के बाद आज मैदानी इलाकों में भी 12 घंटे का बंद बुलाया गया है। इस बीच दार्जिलिंग के अलावा घूम में भी हिंसक झड़पें हुई हैं। पुलिस ने दार्जिलिंग के विधायक अमर सिंह राय के पत्रकार बेटे विक्रम राय को गिरफ्तार कर लिया है। वे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के मीडिया प्रभारी थे। इस कारण भी दार्जिलिंग हिल्स के लोगों में आक्रोश है। सरकार को चाहिए कि वह बातचीत का माहौल तैयार करे, वरना स्थितियां हाथ से निकल सकती हैं। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए दार्जिलिंग में।
गोरखालैंड के लिए जारी आंदोलन। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, रावण और दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आज भीम आर्मी और दूसरे दलित संगठन दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं। प्रदर्शन की अगुवाई चंद्रशेखर की मां कमलेश देवी करेंगी। उनसे बात की हमारे सहयोगी संदीप राय ने।
राजधानी में प्रदर्शन की आप अगुवाई करने जा रही हैं, आपकी मांगे क्या हैं?
भैया मेरी मांग तो यही है कि मेरे बच्चों को रिहाई कर दो। हम अपने बेटे की रिहाई चाहते हैं, बेकसूरों की जो रिहाई है वो चाहते हैं। निर्दोष बच्चों को छोड़ दो, और जिन्होंने घर जला रखा है, जिनके बच्चों के बिल्कुल हाथ पैर भी काट कर रखे, उन्हें कुछ उनका मुआवजा मिलना चाहिए, उन्हें और उनके घरों को देखना चाहिए, उनके घर जला रखे, उनके बच्चे मारपीट कर रखी।
सरकार ने कुछ मुआवजा तो दिया है या देने की घोषणा की है, ऐसी खबर है?
कुछ नहीं नहीं दिया, वो तो दे रहे बेचारे बीमार की बदला कर अपने खून पसीने की कमाई। किसी सरकार ने कोई उन्हें दी, कुछ सरकार भी उनके खिलाफ बहुत षड्यंत्र थी, किसी ने कुछ नहीं दिया।
अभी तो आपके बेटे चंद्रशेखर वो अभी जेल में बंद हैं, उन पर धाराएं जो लगाई गई हैं वो गलत हैं या सही हैं?
मेरे दोस्त हमें उन्होंने कुछ किसी के कोई कत्ल नहीं करा, ना उन्होंने किसी को गोली मारी। उन निर्दोषों को फंसाया जा रहा है बगैर मतलब, और जिन्होंने हमारे घर जलाए उन्होंने कुछ नहीं कहा, बेधड़क घूम रहे हैं, और ये सब सरकार की मिली भगत है।
उत्तर प्रदेश सरकार की मिली भगत है आप ऐसा कह रही हैं?
उत्तर प्रदेश की मिली भगत है, योगी भी बन गए मोदी बन गए, दोनों ने मिलकर इतना बड़ा कदम उठाया भाई, हमारे गरीब बच्चों को दलितों के खिलाफ ये कदम उठाया।
चंद्रशेखर फिलहाल जेल में बंद हैं, उन पर पुलिस ने कई मुकदमे दर्ज किए हैं, ऐसे में वो निर्दोष या बेगुनाह कैसे आप कह सकती हैं कि वो हैं?
क्योंकि मैं उनकी माँ हूँ इसलिए कह सकती हूँ। मेरा बच्चा कोई दुर्घटना नहीं कर सकता, मेरा बच्चा गरीबों की रक्षा करता है और हमेशा करता रहेगा, इतना जीवेगा इतना करता रहेगा, समाज का साथ देता है, समाज का साथ देगा, वो मेरा खून है।
ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने आपको हिरासत में लेकर के पूछताछ की थी, क्या ये बात सही है?
हाँ ये बात सही है, मुझे भी पुलिस ने 4 घंटे रखी थी, और मेरा लड़का भी रखा था छोटे वाला, वो मेरा लड़का 24 साल का, और वहाँ बुला के हम जब पहुँचे 3 बजे पहुँचे थे हम, तो वहाँ पुलिस और मीडिया वाले थे, बस वहाँ जाते सार वो तो थाने वहाँ, और उन्हें हमारा इंटरव्यू ले लगे, और इंटरव्यू लेते लेते मेरे लड़के को तो पुलिस उठा लेगी, उसके कुछ देर बाद मुझे भी फिर पुलिस उठा लेगी, हो गए होंगे 15 दिन।
भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण की मां कमलेश देवी से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी संदीप राय। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एसिड हमले की एक पीड़ित दलित महिला पिछले 1.5 महीने से इलाज के लिए दर दर भटक रही है। इस महिला पर तेजाब डालकर उसका चेहरा विकृत करने वाले व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उनके पिता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उनके पिता को गिरफ्तार किया है, लेकिन सरकार की ओर से ऐसे मामलों में मिलने वाला अनुदान उन्हें अब तक नहीं मिला है, उनके इलाज की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। एक रिपोर्ट सुनिए वात्सल्य राय से।
मेरा नाम खुशबू है, मेरे पापा ने मेरे ऊपर तेजाब डाल दिया, मंत्री के पास गए वहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला, मैं ये चाहते हैं मेरा चेहरा सही हो जाए, मेरा हाथ सही हो जाए। हम बहुत गरीब हैं, हमारा कोई नहीं है, मुझे आँख से भी नहीं देखता ना, मेरा हाथ सीधा होता।
सुबकती और सिसकती खुशबू जब आप बीती बयान करती हैं तो लगता है कि उनका दर्द आंखों से छलक रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के आजमपुर गांव में रहने वाली 27 बरस की खुशबू को ये घाव उनके पिता माणिक चंद से मिले हैं। दलित समुदाय की खुशबू का आरोप है कि माणिक चंद ने अपनी दूसरी नाबालिग बेटी की शादी दूसरी जाति के एक युवक से करा दी। खुशबू का दावा है कि उन्होंने इस मामले की पुलिस में शिकायत दी तो नाराजगी में पिता ने उन पर तेजाब डाल दिया, उनके चेहरे का एक हिस्सा और एक हाथ बुरी तरह जल गए। माणिक चंद को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 1.5 महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी खुशबू सही इलाज के लिए भटक रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एसिड हमलों की पीड़ित महिलाओं को अनुदान दिया जाता है और उनके इलाज की भी व्यवस्था की जाती है, लेकिन खुशबू के मामले में मदद अभी फाइलों के अंबार में ही उलझी हुई है। ऐसे मामलों को देखने वाले मथुरा के प्रोबेशन अधिकारी ओम प्रकाश यादव बताते हैं,
कायदे में तो इनको 1 महीने के अंदर पैसा मिल जाना चाहिए, ये फाइलों के चक्कर में थोड़ा विलंब हो जाता है प्रोसेस में, और उसी वजह से इसमें थोड़ा विलंब हुआ है, और हमारे ख्याल से कल यहाँ चला गया है। अब लखनऊ से एक वेरिफिकेशन और मांगेंगे वो, ये खाता नंबर वैसे हमने उसमें सब लिख के भेजते हैं, लेकिन वो अपनी सुविधा के लिए एक वेरिफिकेशन मांगे।
खुशबू को अनुदान मिलने में देरी तब हो रही है जबकि वो और उनके पति विनोद कुमार बीती 16 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के जनता दर्शन में गुहार लगा चुके हैं। इस दौरान पीटीआई के स्थानीय संवाददाता विजय आर्य विद्यार्थी ने खुशबू की स्थिति को देखते हुए अपने स्तर पर उनकी मदद की कोशिश शुरू की।
जब मैंने इस महिला को देखा तो इसकी आंख पूरी तरह से बंद थी, चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। एक चीज मेरे दिमाग में सीधे सीधे कौन थी कि ऐसे मामलों में उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बालिका सम्मान कोष यहाँ इस राज्य में स्थापित किया गया है, जिससे एसिड से अटैक वाले जितने भी मामले होंगे तो उनको मदद मिलेगी। मैंने तुरंत ये जानने की कोशिश की कि इसको इस व्यवस्था के तहत कोई मदद मिल रही है या नहीं मिल।
नियम के मुताबिक सरकारी मदद के लिए FIR की कॉपी पोर्टल पर अपलोड होना जरूरी है।
विद्यार्थी के मुताबिक घटना के 17 दिन बाद भी FIR की कॉपी अपलोड नहीं हुई थी। विद्यार्थी बताते हैं कि प्रशासन की ओर से बीते 15 दिन से फाइल लखनऊ भेजने का दावा किया जा रहा है। इस बीच खुशबू और उनके पति विनोद कुमार इलाज के लिए मथुरा के जिला अस्पताल और आगरा के SN मेडिकल कॉलेज के बीच चक्कर लगाते रहे हैं। इस पर जिला प्रोबेशन अधिकारी यादव का तर्क है कि जब तक अस्पताल की ओर से इलाज के अनुमानित खर्च के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी तब तक इलाज का खर्च नहीं मिल सकता।
पहले ये कोई पत्रकार आए थे तो तत्काल हमने SN मेडिकल कॉलेज को चिट्ठी लिख दिया था, इनको अविलंब निःशुल्क इलाज करें और इनके इलाज में कितना व्यय आएगा उसका एस्टीमेट भी भेजें, तो एस्टीमेट इनको लाना होगा, थोड़ा पैरवी तो करना पड़ेगा, तो क्यों नहीं देंगे एस्टीमेट।
करीब 1.5 महीने से दर बदर भटक रहे खुशबू और विनोद कुमार का सवाल है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जब सब दरवाजे खटखटा चुके हैं तो अब पैरवी कहाँ और किससे करें। इस सवाल का जवाब विद्यार्थी देते हैं।
सरकार की योजनाओं में तो बहुत बड़ी चीजें करने की बात की जाती है, लेकिन जब वो कार्य रूप में वर्णित करने का मौका आता है तो वहाँ पर कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं मिलती जो उसके अपने आप उनकी देखभाल करे।
यही वो दिक्कत है जिसकी वजह से खुशबू अपने हरे जख्म लिए 1.5 महीने से भटक रही है। वात्सल्य राय, BBC मथुरा।
एसिड पीड़ित एक महिला की दास्तां। और कार्यक्रम में अब अखबार की सुर्खियां पढ़ लेते हैं, पन्ने पलट लेते हैं। मानसी, अखबार क्या कह रहे हैं आज के? सिर्फ मैच की बात कर रहे हैं आज, भारत और पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है।
आज एक खबर तो मैच से जुड़ी हुई जरूर है, पुरानी दुश्मनी नया जोश। हिंदुस्तान टाइम्स के पन्ने पलटने से पहले आपको पेज 1+ पर विराट कोहली के चेहरे के साथ ये लिखा दिखेगा, बीजिंग ओलंपिक और वर्ल्ड कप फाइनल से अधिक देखा जाएगा आज भारत पाकिस्तान का मैच। ये है दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर छपी खबर। दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर खबर है, पाकिस्तान को फाइनली पटकने उतरेगी विराट सेना, मुकाबला आर पार का, लिखता है नवभारत टाइम्स। कह लीजिए हर अखबार का पहला पन्ना क्रिकेट का रंग लिए हुए है।
और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम आपको इस के बारे में विस्तृत रिपोर्ट सुनवाने वाले हैं। आदेश कुमार गुप्त आपको रिपोर्ट सुनवाएंगे और फिर एक इंटरव्यू भी सुनवाएंगे कि भारत का पलड़ा कैसा और क्या हो सकता है।
जी, अब कुछ बड़ी खबरें श्रोताओं को बता दूं। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार उत्तराखंड सरकार दीक्षांत समारोह में छात्रों के पहनने वाले कन्वेंशन रोब यानी लबादे को बदलने के लिए प्राचीन हिंदू किताबों का अध्ययन कर रही है। अखबार के अनुसार प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि इसके लिए सरकार जानकारों की मदद ले रही है जो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राचीन भारत में खासकर तक्षशिला में छात्र दीक्षांत समारोह में किस तरह के कपड़े पहनते थे। उत्तराखंड से ही एक और खबर है जो जनसत्ता में छपी है, पिथौरागढ़ में सुरेंद्र सिंह नाम के एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। अखबार के अनुसार प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार है जब कर्ज में डूबे किसी किसान ने आत्महत्या की है। अखबार लिखता है कि सुरेंद्र की खुदकुशी से गुस्साए गांव वालों ने जिले के बेरीनाग तहसील में प्रदर्शन किया है। इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर खबर है, जम्मू कश्मीर में चरमपंथियों के हमले में मारे गए पुलिस अधिकारी फिरोज अहमद डार के बारे में साल 2013 में उनका लिखा एक फेसबुक पोस्ट अब वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने लिखा था, कौन जानता है कि कब्र में जाने के बाद पहली रात हमारे साथ क्या होगा। अखबार के अनुसार उनकी ये पोस्ट उनके दोस्तों और रिश्तेदारों को उनकी याद दिला रही है। आपको बता दूं कि भारत प्रशासित कश्मीर के अनंतनाग जिले के अच्छाबल में शुक्रवार को चरमपंथी हमले में 6 जवानों की मौत हो गई थी, उनमें से एक फिरोज अहमद डार भी थे।
बहुत बहुत शुक्रिया मानसी। और हफ्ते भर पाकिस्तान के उर्दू अखबारों में कौन कौन सी खबरें प्रमुखता से छपी, सुनते हैं दिलनवाज पाशा से।
इस हफ्ते पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की बात की जाए तो भारत प्रशासित कश्मीर में होने वाली हिंसक झड़पें, पनामा लीक्स मामले में नवाज शरीफ की संयुक्त जांच दल के सामने पेशी और इंग्लैंड में चल रही क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी खबरें सुर्खियों में रहीं। सबसे पहले बात क्रिकेट की। इंग्लैंड में खेली जा रही ICC चैंपियंस ट्रॉफी की खबरें अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। खासकर सबकी निगाहें रविवार को ओवल के मैदान में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले फाइनल मुकाबले पर हैं। अखबार जंग के अनुसार फाइनल मैच की टिकट 15 गुना ज्यादा कीमत पर ब्लैक हो रही है। अखबार के अनुसार 140 पाउंड के टिकट अब 1000 से 2000 पाउंड में बिक रही है। अखबार नवाए वक्त के अनुसार पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने सलाह दी है कि टॉस जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। अखबार जंग ने एक दिलचस्प खबर दी है कि 1992 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा था उस समय भी रमजान का पवित्र महीना था। जंग के अनुसार चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी रमजान में हो रहा है और पाकिस्तानी टीम इस मुबारक महीने में जीत कर पाकिस्तानियों को ईद का तोहफा देगी। अखबार दुनिया ने लिखा है कि शेक्सपियर के शहर में पाकिस्तानी टीम जीत की नई दास्तान लिखने को तैयार है। अखबार के अनुसार पाकिस्तानी टीम भारत के पिछले पूरे रिकॉर्ड का हिसाब चुकाने के लिए बेचैन है। पनामा लीक्स की खबरें भी पूरे हफ्ते छाई रहीं। भ्रष्टाचार से जुड़े पनामा लीक्स मामले में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी संयुक्त जांच टीम ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पूछताछ के लिए बुलाया था। अखबार जंग के मुताबिक नवाज शरीफ से 3 घंटे की पूछताछ हुई। बाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने जांच कमेटी के सामने पाई पाई का हिसाब दे दिया है। जंग के मुताबिक नवाज शरीफ का कहना था, संविधान और कानून की सर्वोच्चता के हवाले से आज का दिन संगमील का दर्जा रखता है। सरकार और मेरे पूरे खानदान ने अपने आप को जांच के लिए पेश कर दिया है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब एक प्रधानमंत्री एक संदिग्ध की हैसियत से किसी जांच कमेटी के सामने पेश हुए हैं। नवाज शरीफ ने आगे कहा कि अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते। शरीफ का कहना था कि उनकी सरकार या उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, बल्कि उनके निजी कारोबार को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान एक्सप्रेस के अनुसार नवाज शरीफ के प्रवक्ता मुसद्दिक मलिक ने कहा कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम द्वेष की भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा, पक्षपातपूर्ण फैसले से प्रजातंत्र मजबूत नहीं होगी। लेकिन नवाज शरीफ के बयान का जवाब देते हुए प्रमुख विपक्षी दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP ने कहा कि जब प्रधानमंत्री एक संदिग्ध की हैसियत से जांच कमेटी के सामने पेश होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। एक और विपक्षी नेता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान ने कहा कि पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट और JIT के साथ है।
उर्दू अखबारों की समीक्षा सुना रहे थे दिलनवाज पाशा।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
भारत और पाकिस्तान के बीच इंग्लैंड के ओवल में आज चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जाएगा और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि 10 साल में ये पहला मौका है जबकि भारत और पाकिस्तान की टीमें ICC के किसी टूर्नामेंट के फाइनल में आमने सामने हैं। हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त बता रहे हैं कि फाइनल में भिड़ने वाली इन दोनों टीमों का टूर्नामेंट में अब तक का सफर कैसा रहा है।
दुनिया के किसी भी कोने में अगर क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाए तो फिर क्रिकेट के चाहने वालों के लिए इससे अधिक क्या हो सकता है। अब आज यही दोनों टीमें ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टकराने जा रही है। पिछले चैंपियन भारत ने ग्रुप मैच में श्रीलंका के हाथों 7 विकेट से हारने के बाद दमदार खेल दिखाते हुए फाइनल में जगह बनाई है। वहीं पाकिस्तान तो इस चैंपियनशिप में छुपा रुस्तम साबित हुआ। भारत के हाथों पहले ही मैच में डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 124 रन से करारी मात के बाद उसने जबरदस्त वापसी की। पाकिस्तान ने अगले ही मैच में डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से और उसके बाद श्रीलंका को 3 विकेट से हराकर अपना खोया आत्मविश्वास हासिल किया। सेमीफाइनल में तो इंग्लैंड कहीं भी पाकिस्तान के सामने नहीं थी। उसे 211 रन पर समेटने के बाद पाकिस्तान आसानी से 8 विकेट से जीता। दूसरी तरफ भारत ने भी सेमीफाइनल में बांग्लादेश 9 विकेट से हराया। सेमीफाइनल तक के सफर में भारत की सलामी जोड़ी शिखर धवन और रोहित शर्मा जमकर चमकी है। शिखर ने पाकिस्तान के खिलाफ 68, श्रीलंका के खिलाफ 125, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 78 और सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ 46 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने भी पाकिस्तान के खिलाफ 91, श्रीलंका के खिलाफ 78 और सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 123 रनों की शतकीय पारी खेली। रही बात कप्तान विराट कोहली की तो उन्होंने भी सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 96 रन बनाए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 76 और पाकिस्तान के खिलाफ भी नाबाद 81 रन बनाए। आज होने वाले महामुकाबले से पहले भारत के कप्तान विराट कोहली ने कहा,
हम लोग सिर्फ अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि जाएं और अच्छी क्रिकेट खेलें, टीम को मैच जिताएं। वो जीतने के लिए हमें समझ है कि हमें कंपोजर के साथ खेलना ही होगा। अगर बाद का रिजल्ट का या अपनी परफॉर्मेंस का इन सब चीजों का सोचेंगे तो डिस्ट्रैक्शन होगा और आपका डिसीजन मेकिंग खराब हो सकता है। हमारे लिए एक क्रिकेट मैच है जो हम जाके जैसी अभी तक क्रिकेट खेली है कंसिस्टेंट, वैसा ही कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी परफॉर्मेंस हो सके।
रिकॉर्ड के पन्नों पर दोनों टीमें अभी तक 10 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फाइनल खेल चुकी है। इनमें से 7 पाकिस्तान ने और 3 भारत ने जीते हैं। पिछले 5 एक दिवसीय मैचों में भारत 4 बार और पाकिस्तान 1 बार जीता है। आज भारत चैंपियंस ट्रॉफी को 3री बार और पाकिस्तान पहली बार अपने नाम करने के लिए मैदान में उतरेगा।
भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को दशक का सबसे बड़ा मुकाबला कहा जा रहा है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने इसे लेकर पूर्व क्रिकेटर मदन लाल से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि वो इस मुकाबले को किस तरह से देख रहे हैं।
इंडिया पाकिस्तान का बड़ा ही मैच होता है, छोटा कभी हुआ है आज तक? तो ये बड़ा ही होगा और इंडिया के काफी चांसेस हैं जीतने के और इंडिया की टीम खेल भी बहुत अच्छा रही है। हर डिपार्टमेंट में उन्होंने हल्ला बोला हुआ है, अपने बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में हर चीज जो है बहुत बेहतरीन कर रहे हैं।
विराट कोहली का कहना है कि ये जो फाइनल होगा ये किसी भी दूसरे मैच की तरह होगा। क्या ये एक सामान्य मैच होता है या इंडिया पाकिस्तान के मैच में कुछ अलग बात होती है?
नहीं, इंडिया पाकिस्तान के मैच में थोड़ी सी अलग बात होती है क्योंकि एक तो सारा नेशन देख रहा होता है। आपको जानते ही हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कैसे हैं, उसी की वजह से मैं समझता हूँ कि ये मैच जरा थोड़ा सा बहुत हाइप पे चला जाता है। पर आफ्टर ऑल ये है, एक क्रिकेट मैच ही है।
कागज पर तो बहुत पड़ला भारी है भारतीय टीम का, लेकिन भारत पाकिस्तान के मैच में कई बार आंकड़े ज्यादा मायने नहीं रखते।
नहीं देखिए, फाइनल मैच में आंकड़े मायने नहीं रखते और हम दोनों टीमों को एनालाइज करें तो भारत बहुत भारी है, पर ये फाइनल मैच है, इसको आप जीतना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक लास्ट बॉल नहीं चला जाता डाल नहीं देते आप मैच आप जीता नहीं समझ।
भारतीय टीम का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपको क्या लगता है?
नहीं, टीम कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक है, जो पिछले मैचेस में जो विराट कोहली ने टीम खिलाई है बिल्कुल अच्छी टीम है मेरे विचार में, क्योंकि दो स्पिनर खेलना बड़ा जरूरी है। बट ये है कि हार्दिक पांडे को थोड़ा सा सोच समझ कर गेंद करनी पड़ेगी, तो अगर वो कहीं मार खा जाते हैं तो पांचवा बॉलर जो है खुल जाता है पूरा, जैसे लास्ट मैच में हुआ केदार यादव को गेंद कराने पड़े। अगर किसी और खराब होता है तो आपके 20 ओवर जो है लटके जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उसमें क्या हो गया फिर रिकवरी करना बड़ा मुश्किल है।
भारतीय टीम किस रणनीति के साथ उनको उतरना चाहिए?
टॉस की अगर बात कर रहे हैं तो विराट कोहली मेरे को लग रहा है कि वो चेज करना ज्यादा पसंद करते हैं, पर विकेट को देखेंगे, कंडीशन देखेंगे, उसके हिसाब से वो तय करेंगे भी उनको क्या करना चाहिए। अगर विकेट में थोड़ा सा घास ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा है लगे कि टीम हो सकता है, शायद वो पहले बॉलिंग कर लें, हम अगर जल्दी जल्दी विकेट ले लेते हैं तो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर डाल सकता है। इंग्लैंड के कंडीशन के हिसाब से हमें बैटिंग करनी चाहिए।
पहले मैच में जो लीग राउंड में दोनों टीमें आमने सामने आई थी उस समय युवराज सिंह एक्स फैक्टर साबित हुए, इस बार आप किन खिलाड़ियों पर भारतीय टीम के ज्यादा नजर रखेंगे?
देखिए, ज्यादा नजर तो ओपनर पे रहती है हमारी, शुरुआत एक अच्छी मिल जाती है मैं समझता हूँ कि टीम के लिए एक राहत की बात होती है। दूसरी है नंबर 3 हमारा बहुत स्ट्रांग है और विराट कोहली 9 की कैसे गेम बैटिंग करनी है, और उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर में धोनी और युवराज है ये बहुत टॉप क्लास के प्लेयर है, इनको इन्हें इतने एक्सपीरियंस है इनका इंटरनेशनल मैचेस, युवराज ने 300 मैच खेले हैं, धोनी ने भी 300 से ज्यादा मैच खेल दिए हैं।
पाकिस्तान टीम के वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनकी आप ज्यादा घेरेबंदी करके मैदान में उतरना चाहेंगे?
शुरू वाले बल्लेबाज हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, पर ज्यादा हफीज और शोएब मलिक जो है ये थोड़े से डेंजरस है क्योंकि सीनियर प्लेयर है, काफी क्रिकेट खेली हुई है, सरफराज उनका कैप्टन थोड़ा सा मेरे को लगता है कि वो बड़ी सेटल करके बैटिंग करता है।
पूर्व क्रिकेटर मदन लाल। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के लोग अपनी अपनी टीमों की जीत की दुआ कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान टीम के कप्तान सरफराज के तमाम रिश्तेदार भारत की जीत की दुआ कर रहे हैं। इटावा में रह रहे सरफराज अहमद के मामू महबूब हसन कहते हैं कि उनकी दुआएं तो सरफराज के साथ हैं लेकिन जीत भारत की ही चाहते हैं।
देखिए, ऐसा है क्योंकि मैं भारत देश में रहता हूँ, भारत से मुझे प्रेम है, तो अगर किसी भी दूसरे मुल्क से मैच होता है, पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, तो मेरी यही नजरिया रहता है कि हमारी भारत टीम जो है जीते। हमारी दुआएं रहती हैं उनके साथ कि सरफराज अहमद जो है अगर अच्छा रिस्पांस नहीं करेंगे, अच्छा मैच नहीं खेलेंगे, तो पाकिस्तान टीम में जो है जो उनको जगह मिली है तो पीसीबी उनको जगह देगा नहीं।
पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद के मामू महबूब हसन की आवाज आप सुन रहे थे। और इससे पहले की कार्यक्रम में हम आपसे विदा ले, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में कल हुई 2 मौतों के विरोध में आज गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बंद का आह्वान किया है। سعودی عرب نے اپنے پڑوسی قطر پر لگائے آروپوں کو دہرایا ہے اور کہا ہے کہ قطر آتنکوادی سموہوں کا پوشن کرتا ہے اور دوسرے دیشوں کے معاملوں میں ہستکشیپ کرتا ہے۔ برٹین میں سوڈان ڈاکٹرز یونین کا کہنا ہے کہ سوڈان کی سرکار کو دیش میں ہیضہ کی مہاماری کی گھوشنا کر دینی چاہیے۔ بی بی سی سماچار۔
بی بی سی ہندی سیوا کی پہلی سبھا نمسکار بھارت کے اس انک میں بس اتنا ہی۔ آج اسٹوڈیو سنبھال رہے تھے اجیت سارتھی۔ شام 7:30 بجے دن بھر کارکرم لے کر ہم پھر سے اپستھت ہوں گے۔ تب تک موہن لال شرما کو ودا دیں اور آپ کو بتا دیں کہ کرکٹ کی تمام خبریں اس سمے بی بی سی ہندی .com کے پنے پر ہیں۔ آئیے اسے پڑھیے۔ موہن لال شرما کو ودا دیں۔ نمسکار۔